नमस्कार, ओला, अलोहा, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नन्हे एवं बड़े दोस्तों, स्वागत करती है प्राची आपका अपने पॉडकास्ट कहानी पे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये किसने लिखी और कहाँ पे लिखी ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर जानती हूँ ये आपके दिल में एक अलग सी जगह पे छुएगी, आपके अंतर मन के सागर में आपको गोते लगाने पे ज़रूर मजबूर करेगी। विच सिंपली मीन्स दैट इट विल टच वेरी वार्मली इन योर हार्ट एंड यू विल बी प्रॉबली एंड परहैप्स पुश्ड नज्ड टू गो एंड लुक विद इन योर इनर बीइंग। तो शुरू करते हैं कहानी। भिखारी, एक भिखारी था, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता था और वहीं पे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा था। कभी कभी वो रेल में, ट्रेन में सफ़र भी करता था एक स्टेशन से दूसरे तक। एक दिन उसने भीख मांगते समय एक सूट बूट पहने हुए सेठ को देखा। उसने सोचा, ये तो बड़े सेठ लग रहे हैं, अच्छा पैसा मिलेगा इनसे भीख मांगने पर। तो वह उनके पास जाके भीख मांगने लगा। उस भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगूंगा ही ना, मेरी कहाँ ऐसी औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ? दे सकता होता तो क्या भीख मांगता? तो सेठ बोला, जब किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो फिर तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। देखो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, वरना जय राम जी की। और ये कहते ही स्टेशन आ गया उस सेठ का जहाँ पे उन्हें उतरना था और वो चले गए। सेठ तो चले गए लेकिन उनकी बात इस भिखारी के साथ रह गई और उसने बहुत सोचा। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी। वो सोचने लगा, शायद इसीलिए मैं पैसे भी नहीं कमा पाता हूँ भीख में, क्योंकि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ। हो सकता है सेठ सही कह रहा हो, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक है ही नहीं मेरे पास। वो अपना सर खुजालता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूँ किसी को। बहुत सोचने के बाद उसने ये फैसला किया, ये निर्णय किया, ही केम टू दिस कंक्लूजन कि अब जब भी उससे कोई कुछ देगा बदले में वो उन्हें कुछ ज़रूर देगा। ही विल गिव समथिंग बैक टू हूएवर गिव्स आर्म्स टू हिम नाउ मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन ये प्रश्न उसके दिमाग में कौतूहल मचाए हुए था अभी भी। ही वॉज स्टिल परप्लेक्स्ड, क्वेश्चन था उसके दिमाग में कि मैं क्या दूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। काफ़ी दिन गुजर गए उसको ऐसे सोचते हुए और बहुत मुश्किल से उसको उसका जवाब मिला। एक दिन वो वहीं स्टेशन पे जब बैठा हुआ था तो वहाँ रखे हुए कोई गमले थे, पौधे जिनमें कुछ फूल उग रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये कुछ फूल जो यहाँ उगे हैं इन्हें तोड़ के अपने पास रख लूँ और जब भी कोई मुझे पैसे रुपए देगा मैं उन्हें ये फूल एक दे दूंगा। ही बॉट सम ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम अ पॉट दैट वॉज नियर बाय हिम एंड ही सैट विद दोज फ्लावर्स टू पास ऑन टू पीपल हु वुड गिव हिम द मनी। फिर वो वापस से ट्रेन के पास गया भीख मांगने और जब किसी ने भी उसे भीख दी उसने मुस्कुराते हुए एक फूल पकड़ा दिया। फूल पाके लोग जो उसे पैसा दे रहे थे बड़ा खुश हो रहे थे, स्माइल आ रही थी उनके चेहरे पे। पीपल वर गेटिंग हैप्पी टू रिसीव बैक समथिंग फ्रॉम द भिखारी। अब ये भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में जो भी उसे पैसे दे रहे थे उन्हें वो फूल दे देता। कुछ दिन बीत गए और उसको ये एहसास हुआ, ही फेल्ट कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं, दैट ही इज़ गेटिंग मोर मनी, देयर आर मोर पीपल गिविंग हिम मनी। वो आस पास के सभी फूल तोड़ के ले आता था और जब तक उसके पास ये फूल रहते थे उसने महसूस किया कि उसे ज़्यादा लोग पैसे देते थे। जब बांटते बांटते उसके फूल ख़त्म हो जाते थे तो उसे फिर भीख भी नहीं मिलती थी। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही सेठ जिसने ये लेन देन की बात कही थी, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले किसी को कुछ देने की प्रेरणा मिली थी, वो ही बैठे नजर आए। वह तुरंत उनके पास गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज तो आपको मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। मेरी भीख के बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस सेठ ने भीख में उसको कुछ रुपए दे दिए और भिखारी ने बदले में कुछ फूल उनके हाथ में दे दिए। और सेठ को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कह के सेठ ने जो फूल लिए थे अपने हाथों में लिए और स्टेशन पे उतर गए। फिर से एक बार सेठ तो उतर गया, लेकिन उनकी कही हुई बात इस भिखारी के दिल में फिर से घर कर गई। ही वॉज इम्पैक्टेड बाई वॉट दैट मैन हैड जस्ट सेड। वो बार बार अपने मन में उस बात को गूंजित करने लगा और बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जब ट्रेन से उतरा, बहुत उत्साहित होकर, बहुत हैप्पी होके, जैसे कि उसे कोई मैजिकल खजाना मिल गया हो, किसी चीज़ की चाबी हाथ लग गई हो, ऐसा फीलिंग के साथ, उस एहसास के साथ उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, और झूमते हुए चलने लगा। जो लोग उसके आसपास थे, सब सोचने लगे, ये भिखारी बेचारा पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी दोबारा उस स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। एक साल के बाद उसी सेम स्टेशन पर अब दो व्यक्ति, टू पीपल, सूट बूट पहन के यात्रा कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन। एक दूसरे को दोनों ने देखा। एक ने हाथ जोड़कर दूसरे को प्रणाम करा, डिड अ ग्रीटिंग ऑफ नमस्ते। पूछा उनसे, आपने क्या मुझे पहचाना नहीं? तो जो दूसरा आदमी था, वो सेठ था, उसने कहा, नहीं तो, हम शायद पहली बार ही मिल रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, तीसरी बार? पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कहाँ मिले हैं हम पहली दो बार, ज़रा याद कराइए। तो वो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार भी इसी ट्रेन में मिले थे और दूसरी बार भी। मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली मुलाकात में आपने बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असलियत में कौन हूँ। यू टोल्ड मी इन द फर्स्ट मीटिंग व्हाट टू बी डन इन लाइफ, एंड इन द सेकेंड मीटिंग यू टॉट मी द लेसन ऑफ हु आई रियली एम। तो नतीजा यह निकला सेठ जी कि आज मैं फूलों का बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आई हैव अ बिजनेस ऑफ माई ओन, आई सेल फ्लावर्स। और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टू विजिट अनदर सिटी फॉर माई बिजनेस। सेठ जी, आपने पहली मुलाकात में प्रकृति का एक नियम बताया था मुझे कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। यू टॉट मी अ लॉ ऑफ नेचर दैट We have to give something to get something. उसने आगे कहा, लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। It is very true about giving and receiving, and I have lived this as an experience now. ये मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा, उससे ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं था। और दूसरी बार जब आपसे मुलाकात हुई, तब आपने मुझे ये बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं बस एक भिखारी हूँ, भिखारी ही रहूँगा। पर आपने मेरी आँखें खोल दी। जब तक भिखारी मैंने खुद को समझा, मैं भिखारी रहा। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार कर सकता हूँ, मैं व्यापारी बन गया। सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के सेठ की आँखों में नमी थी और होठों पर एक मुस्कान। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी, अपने स्टेशन पे, और वो दोनों व्यापारी अपनी अपनी राह चल दी। इसलिए मुनि महर्षियों ने शायद सही कहा है दोस्तों, कि स्वयं को जानने में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। शिव भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। जिंदगी के बहुत सिंपल वे में से जुड़ें तो सही है, चाहे आप किसी से मिलें, चाहे वो आपको एक ब्लेसिंग ही क्यों ना दे रहा हो, आपको सिर्फ एक नमस्कार क्यों ना कह रहा हो कोई, अगर आप अपनी मुस्कुराहट भी बदले में देते हैं तो वो आदान प्रदान पूर्ण हुआ, आपने रिसीव किया और आपने गिव भी किया। कितना ब्यूटिफुल थॉट है ये। वैसे ही हम अपने आप को जब एक सीमित सोच में कैद कर लेते हैं, जैसे उस भिखारी ने कर रखा था, तो हमारे पास बढ़ने की, आगे ग्रो करने की जो क्षमता है उस पे पैबंद लग जाता है। तो दोस्तों, इन छोटी सी दो बातों को याद रख के ज़िंदगी में कितना आसान है, सरल है कुछ करते जाना, अपनी लिमिट्स को इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए आगे अग्रसर हमेशा बढ़ते रहना। गांठ बांध दिया आज इन दो बातों की, शेयर करना ना भूलें औरों से इस कहानी को या इस कहानी की सीख को। इस कहानी का आध्यात्मिक रूप में भी एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन जुड़ता है कि जब तक हम आत्मसमर्पण करके उस अल्लाह, जीसस, गॉड, रब, मौला, यूनिवर्स या हायर कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं होंगे, उसके प्रेम में पूरी तरह से नहीं डूबेंगे, पूरी तरह समर्पण करके, तब तक वो हमें कैसे मिलेगा। और जब तक हम ये बात नहीं मान लेंगे कि मेरे अंदर शिव है, मैं खुद उस शिव का एक पार्ट हूँ, उस समुद्र की एक बूंद हूँ जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तब तक कैसे मैं बाकियों को या खुद को उस ऊंचे स्थान पर स्वयं रखकर जान पाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी और इस कहानी के मंथन को यहीं समाप्त करते हैं, दी एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी उतनी पसंद आई होगी जितनी मुझे आई थी जब मैंने सुनी थी। तो मुझे बताइए आपको ये कहानी या मेरी और दूसरी कहानियाँ कैसी लगी, या और भी कोई ख्याल, कोई विचार या कोई और थॉट हो, या कोई आप बीती एक घटना हो जिसे आप कहानी के रूप में यहाँ मेरी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे, तो मुझे लिखना ना भूलें एट माई ईमेल एड्रेस, जो कि है WRITE@PRACHIGANGWAL.com, write@PrachiGangwal.com सबसे बेहतर तरीका है मुझ तक जल्द से जल्द पहुंचने का। और दोस्तों, आपके ईमेल्स, कमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, आपका प्यार मुझ तक पहुंचता रहता है, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अटेंशन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट कहानी। तो सुनते रहिए कहानियाँ ऑन कहानी पॉडकास्ट प्राची की जुबानी। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।